कुंज बिहारी
Yeah.
भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
नारायणं नमस्कृत्यं
नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं
नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयम् भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यानोमिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदा नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणि प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्णकल्याणसिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते रक्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि विश्वानुसुते वाञ्छाकल्पतरोदस्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे आराध्यो भगवान् ब्रजेश तद्धाम श्री वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधूम् वर्गे नवाकल्पितम् श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममलम् प्रेमा प्रमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मद्विदम् तत्रादरो न परः जन्माधस्य यतन्य या वितरत चार्थिष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्तत्रातिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि वंसे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणविं बफलधरोष्टां पुरणेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्दनेत्राय कृष्णात् परम किमपि तत्त्व अहं न जाने यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्ति दिव्यस्तवैर् विदयसाङ्गपदक्रमोपनिषदि गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्ति तदद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदोऽसुरासुरगणादि वा तस्मै नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। स्वागत है सभी भक्तों का महिमा माता जी के घर में। मैं कितने लोग पहली बार आए? मैं भी पहली बार आया हूँ। पद्मावती जी कहाँ हैं? अच्छा, रायपुर गुजर से कहाँ? इस घर में एक बहुत पवित्र आत्मा रहती है, पद्मावती माता जी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आज हम जैसे कि हमने विचार किया था कि गृहस्थ धर्म का पार्ट टू लेंगे। शायद सब भक्तों को मैसेज भी आया ना, भागवत में लिखे लेके भी आए सब। तो आज हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट बार करेंगे। क्योंकि आज ऐसा ही अचानक मुझे दोपहर को, एक्चुअली मैं क्लास वही लेने वाला था, लेकिन मुझे दोपहर को ऐसा अचानक सूरत में सुबह क्लास दिया तो सब भक्तों ने, कई सारे लोगों ने नवरात्रि और दशहरा ये सारे चीज़ों के बारे में पूछताछ किया, प्रश्न किया। तो मैं बोला चलो वैसे भी माहौल ये है तो लोगों को इस प्रकार का माहौल यही चल रहा है, गर्म में माहौल पूरा, तो इसी संबंधित कुछ ही चर्चाएँ उस कथाओं को किया गया। तो ये जो समय अभी चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है? नवरात्रि का समय। नवरात्रि भोग रात्रि, तो संसार के सारे लोगों ने इसको भोग रात्रि बना दिया है। मैं कल शाम को जब सूरत जा रहा था तो सूरत की क्या स्थिति है, पूरा रोड और पूरा क्या क्या सब, पूरा गुजरात में इस नवरात्रि को, ऐसे तो सब जगह ऐसी स्थिति हो गई है। पूरा नवरात्रि इतने पवित्र तिथि, पवित्र समय को लोगों ने, सारे लोग ने मिलकर उसको भोग रात्रि बना दिया है, इंद्र तृप्ति का एक साधन बना दिया है। बहुत दुख होता है कि ऐसे समय, क्योंकि ये बहुत विशेष समय है। मैं इसके बारे में जब सोच विचार कर रहा था तो बहुत सारी चीजों को मैंने पढ़ा कि कितना ये जो समय है, जो नौ दिन का समय है, विशेष करके दस दिन का, दशहरा को लेकर, आज दशहरा है, आज दशहरा कुछ लोग आज मना रहे हैं, इसे स्मार्ट तिथि के अनुसार आज है और वैष्णव तिथि के अनुसार कल है, तो दोनों दिन लोग मना रहे हैं। शायद दोपहर के बाद का मुहूर्त जो है चालू हो गया है ऐसा। तो दशहरा है, विशेष करके ये जो दस दिन का जो समय है ना, बहुत महत्वपूर्ण समय है। एक्चुअली में इस दस दिन में ना भगवान ने इन दस दिनों में दो आसुरी, बड़ी बड़ी आसुरी शक्तियों का विनाश हुआ। कौन कौन से? एक रावण का और दूसरा माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। ये दो बड़े आसुरी शक्ति, उसका विनाश हुआ इस दस दिनों के अंदर। तो अगर हम उनके पांच टाइम्स को पढ़ेंगे, जैसे भगवान रामचंद्र और रावण का जो पांच टाइम में विशेष करके उनके युद्ध, ये दस दिन लगातार युद्ध चला था, भगवान राम में और रावण का युद्ध दस दिन तक चला था। और विशेष करके जो नवरात्रि है, इस देव माता दुर्गा ने महिषासुर का इस नवरात्रि में वध किया था। तो हम इन कथाओं को न सुनकर न श्रवण करके पूरे नवरात्रि का जो समय है, अपनी भोग, अपने इंद्र तृप्ति के लिए हम पूरा प्लान करते हैं, है ना। पूरा सारे संसार के लोग पूरे साल में इस समय का वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, है कि नहीं है? नहीं, सब इंतजार करते हैं सबको। अभी तो डिवोटीज बनने के बाद हो सकता है कि नहीं करते हो, लेकिन ये पहले इस चीज का सोचिए, विचार करें कि कितना इस समय का इंतजार रहता था लोगों को, इस समय का इंतजार, क्योंकि पूरा इंद्र तृप्ति करने के लिए अलग अलग एंगल से बहुत सारे साधन उपलब्ध है, बहुत सारे साधन उपलब्ध है। क्योंकि एक्चुअली परमिशन भी रहता है, प्रशासन के द्वारा भी छूट रहता है, है ना, किधर भी रोड ये वो सारा चीजें, रात को 12 एक दो बजे तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन वही अगर मंदिर में कुछ रात को 12 बजे तक रह दे तो पुलिस आ जाएगी, नोटिस आ जाएगा, प्रोग्राम बंद करो, साउंड बंद करो, है? लेकिन प्रशासन की तरफ से भी ये छूट है 12 एक बजे तक, मैंने सुन रहा था कि 12 एक बजे तक छूट है। तो बहुत विशेष तिथि, विशेष समय है दस दिन का एक्चुअली। और इस विशेष समय में अभी दो तीन दिन पहले दुर्गा पूजा गया, दुर्गा पूजा का दिन गया, तो भगवान राम ने एक तो दुर्गा जी ने महिषासुर का उद्धार किया और भगवान राम ने रावण लगा, दोनों में से कौन सा सुनना है? रावण लगा, दोनों सुनने के लिए दो घंटा चाहिए, चलेगा? नहीं, एक ही सुनते नहीं तो सब अगली बार से और छोड़ देंगे। तो दुर्गा देवी ने महिषासुर का उद्धार किया, उसकी भी कथा है, लेकिन विशेष करके भगवान रामचंद्र ने इस समय में माता दुर्गा जी का उपासना किया था। रामचंद्र जी ने, भगवान राम ने दुर्गा देवी का उपासना किया था। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो लोग क्या है ना कर रहे हैं, बहुत ये 10 दिन का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छा करते हैं, कितना सुंदर तरीके से सारा फेस्टिवल्स को अरेंज करते हैं ना, कितना उत्सव वाला माहौल बनाते हैं, लेकिन पता नहीं है, जानते नहीं है और जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं, क्योंकि कलयुग है, इसमें जानने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते हैं। तो इस समय भगवान रामचंद्र, जब भगवान रामचंद्र ने यह विचार कर लिया कि अभी रावण के साथ युद्ध करना है, जब ये विचार कर लिया प्रभु राम ने, तब भगवान राम और अनुज अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वह जाकर भगवान देवी दुर्गा की उपासना किया। उन्होंने इस समय में दुर्गा पूजा किया, विशेष करके देवी का उपासना किया उन्होंने भगवान रामचंद्र ने। और उपासना के दौरान जब देवी प्रकट हुई, प्रकट होने के पश्चात भगवान रामचंद्र ने बोला कि हे देवी, मैंने इस संसार की सबसे बड़ा आसुरी जो शक्ति है मैं उसको विनाश करने जा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनसे कृपा याचना करने के लिए भगवान रामचंद्र ने देवी दुर्गा का उपासना किया वहां पे। तो जब ही देवी दुर्गा प्रकट हुई तो भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि हे देवी, जो ये संसार का जो सबसे बड़ा आसुरी शक्ति है रावण, मैं उसका वध करने जा रहा हूँ, उसके साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, तो आप हमारे ऊपर विशेष कृपा यह करिए कि ये जो रावण है ना, ये आपके पति का महान भक्त है, ये जो रावण है आपके पति का महान भक्त है, है ना। तो प्रभु राम ने क्या किया, संसार में अगर कोई व्यक्ति किसी से कंट्रोल नहीं होता है तो अंततः पत्नी से तो कंट्रोल हो ही जाता है ना, जसन को नहीं होता है। तो प्रभु राम ने देवी दुर्गा का उपासना किया, उपासना करके उनसे याचना किया कि आप अगर शिवजी नाराज होंगे कि हमारे महान भक्त का वध कर दिया, तो आप थोड़ा सा ध्यान देख लीजिएगा और मैं इस आसुरी शक्ति का साथ युद्ध करने के लिए निकल रहा हूँ। तो इस प्रकार से रावण के साथ प्रभु राम जो युद्ध करने के लिए निकलने से पहले माता दुर्गा का उपासना किया था, और इसी समय के दौरान नवरात्रि के समय ही तो रावण भगवान प्रभु राम ने जिस आसुरी शक्ति को विनाश करने का जो सोचा, उसका नाम जो है रावण है, रावण है उसका नाम। ये रावण पुलस्त्य ऋषि का वंशज है, रावण बहुत बड़ा ब्राह्मण, पुलस्त्य ऋषि जो है ब्राह्मण कुल के, ये रावण जो है ना ब्राह्मण कुल का था, कोई साधारण नहीं था, ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ था, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता है। हालांकि ये ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन इसके जो कार्य थे ना एकदम आसुरी कार्य थे, आसुरी क्रियाकलाप थे, ब्राह्मण के कोई भी गुण था ही नहीं इसके अंदर, बल्कि वो तो ब्राह्मणों को तड़पाता था, ब्राह्मणों को मारता था। इसलिए कहते हैं कि जब भी जन्म से कोई जो ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण होने के अनुसार भी वो ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि जन्म ना जायते शूद्र, एक्चुअली सब लोग जन्म से शूद्र है ना, लेकिन उसके कर्म के अनुसार, जब ये उसके गुण और कर्म के अनुसार वो ब्राह्मण बनता है ना। कभी कभी अगर वो दूसरे कुल में भी, नीच कुल में भी जन्म लिया हो, लेकिन उसके कार्य अगर उत्तम हो, कार्य अच्छे हो, उसके गुण अच्छे हो, तो ब्राह्मण बन सकता है। भगवान ने भगवद गीता में कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, ये जो चातुर्वर्ण है, ये वर्ण जो है कौन कौन सा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जो चार वर्ण है ना, गुण कर्म विभाग से इनके गुण और कर्मों के अनुसार इनका विभाजन किया गया है। अर्थात जो ब्राह्मण है उसके ब्राह्मण के अंदर क्या बताते हैं भगवद गीता में भगवान, यजन आजन पठन पाठन, पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मण के गुरु का वर्णन करते हैं प्रभु भगवान जी 18वें अध्याय में, गीता के 18वें अध्याय को जब पढ़ेंगे तो वहां पे चार आश्रमों के लोगों का और चार वर्ण के लोगों का वर्णन वहां पे भगवान जी करते हैं कि जो ब्राह्मण होता है उसका कार्य होता है कि वो पढ़ना, उसको पढ़ना चाहिए, पठन पाठन और साथ में उसको पढ़ाना चाहिए और यजन याजन और उसकी जीविका जो है वो मांग के उसकी जीविका को यापन करना चाहिए। तो ये ब्राह्मण के गुण है। लेकिन आजकल के संसार में हम देखते हैं कि ब्राह्मण है ही नहीं कोई। ब्राह्मण है वो पान खा रहा है, गुटखा खा रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, सभी नौकरी कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं और बहुत कम ही लोग ऐसे रह गए हैं जो कि इस प्रकार का पठन पाठन यजन यजन करते हैं। कोई नहीं है आज के स्थिति में, संसार में कोई नहीं है, इसलिए सब लोग शूद्र है। इसी प्रकार ये रावण जो है जन्म तो इसका उत्तम कुल में हुआ था, ब्राह्मण कुल में, और पुलिस ऋषि का वंशज था। लेकिन इसके कार्य जो ना जो पाप करने वाले कार्य थे, जो इसलिए कि देखिए संसार में भी किसी के घर माले पुत्र का जन्म होता है तो रावण नाम नहीं रखते हैं, दुर्योधन नाम नहीं रखते हैं, रखे किसी को देखे कितना बड़ा भी कर्मी रहेगा, कितना बड़ा भी पापी रहेगा, तो अपने घर में वो रावण दुर्योधन नाम नहीं रखता है ना। दुर्योधन रखा है ना, एक दमन का एक घर ना दुर्योधन अच्छा रखते भी है दुर्योधन अच्छा तो जनरली लोग नहीं पसंद करते हैं, है ना, नहीं पसंद करते हैं क्योंकि था तो भी बदनाम था और जाने के बाद भी बदनाम है, तो ऐसा कौन नाम रखेगा, ऐसे आप सुन सकते हो। तो रावण जो था भले से जन्मजात ब्राह्मण था हो, लेकिन इसके कार्य जो थे ब्राह्मणत्व के कार्य थे ही नहीं, एकदम बड़ा असुर था। इसके ये ब्राह्मणों के विपरीत कार्य था इसका। तो रावण के विषय में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वर्णन करते हैं कि चलत दशानंद अवनी डोलत। अगर ये दशानंद दस शीर वाला जब रावण है ना, ये जब चलता था ना तो धरती हिल जाती थी, इतना बड़ा राक्षस था वो, तो जब चलता था तो धरती हिल जाती थी, कांप उठती थी, इतना बड़ा राक्षस, इतना बड़ा पापी था वो, बड़ा क्रूर था ना। इसके विषय में तुलसीदास जी वहां वर्णन करते कि दस सिर था इसके, दशानंद चलत दशानंद, जब ये दशानंद रावण जब चलता था तो डोलत अवनी, ये पृथ्वी हिल जाती थी। इस प्रकार से मैं प्रसंग पढ़ रहा था तो जब दस सिर दशानंद रावण के बारे में जब सुन रहा था मैं थोड़ा सोचने लगा कि ये दस सिर वाला रावण रात में अगर सोता होगा तो कैसे सोता होगा मान लीजिए वो सो भी जाता होगा तो रात को अगर करवट बदलता होगा तो क्या हालत होगा उसका कृष्ण दस सिर लेके अगर वो सोता है ठीक है सीधा सोता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर करवट बदला तो मैं सोच रहा था कि करवट बदला तो ठीक वैसा ही रहता होगा जैसे ना वो पहले के समय में एंटीना होता था ना वो आधी तूफान से वो आधी तूफान आए तो कैसा लटक के गिर जाता था है ना, ऐसा ही दिखता रहा होगा ना। और फिर भी मैं विचार कर रहा था कि अगर मान लो उसके सिर में दर्द होता होगा तो मंदोदरी देवी क्या बोलता होगा, एक नंबर का सिर दबाओ, पांच नंबर का दबाओ, छह नंबर का दबाओ तो कहने का तात्पर्य रावण जो था ना बहुत भयंकर था। लेकिन ये रावण था तो आसुरी प्रवृत्ति का, लेकिन फिर भी इसने एक यज्ञ किया, पता है रावण ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ करके किसके लिए यज्ञ किया, तपस्या किया शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, बहुत बड़ा यज्ञ किया। ये बहुत बड़ा इसलिए यज्ञ माना गया क्योंकि जनरली हम क्या देखते हैं कि यज्ञ में क्या डालते हैं, आहुति के रूप में बहुत सारे सामग्री डालते हैं, द्रव्य को डालते हैं, घी को डालते हैं, जौ को डालते हैं, इस प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, है ना। लेकिन ये रावण का जो यज्ञ था साधारण यज्ञ नहीं था, वो यज्ञ में अपने मस्तक को काटकर शिव जी को अर्पण कर रहा था, एक एक मस्तक को, दस मस्तक दस सिर था उसका, एक एक सिर को काट काट के वो आहुति देने लगा अग्नि में और शिव जी को प्रकट करने के लिए, शिव जी से वर को प्राप्त करने के लिए, शक्तिशाली बनने के लिए इस प्रकार से घोर तपस्या किया उसने। सोचिए कि अपने अपने आप के मस्तक को, अपने अंग को काट कर आहुति देना मतलब कितना बड़ा कार्य है, विचार कर सकते हैं। लेकिन वो अपने सिर को काट कर वो यज्ञ में क्या प्रॉब्लम, तो अपने सिर को काट कर वो यज्ञ में आहुति देता था। तो वर्णन है वहां पे कि एक-एक अपने सिर को काटते गया, एक दो तीन चार पांच ऐसे नौ सिर को काट के वो आहुति में डाल चुका था। और लास्ट में वो दसवां सिर भी काट के जाके डालने वाला था, उसी समय शिव जी प्रकट हो गए। और शिव जी प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद बहुत प्रसन्न हुए उसके इस घोर तपस्या से, और उसको वरदान दिया। और वरदान ने क्या दिया शिव जी ने, उसको सोने की लंका प्रदान किया। सोचिए, सोने की लंका प्रदान किया शिव जी ने उसको, और भी बहुत सारे उसको वरदान दिया। और साथ साथ में ये सोने की लंका जो है ये शिव जी प्रदान किए हैं, उसकी इस घोर तपस्या कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसको सोने की लंका दे दिया। फिर देखिए यहाँ पे बहुत विलक्षण वाली बात है कि जो लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने कितना घोर तपस्या किया, सोचिए विचार करिए, अपने मस्तक को काट काट कर वो अग्नि में आहुति दे डाला। और ऐसा जो सोने की जो लंका है ना, इस लंका को भगवान रामचंद्र ने विभीषण को केवल प्रणाम, विभीषण ने केवल प्रणाम किया, प्रणाम करने मात्र से दे दिया। आप उस घटना को जानते होंगे कि जब माता सीता को रावण जब हरण करके लेके पहुंचा लंका में, उस समय विभीषण ने रावण को बहुत समझाया, अरे तुम क्या किया, छोड़ दो, इससे तुम्हारा विनाश हो जाएगा, 100% विनाश हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने जिसका हरण किया है ना वो कोई साधारण व्यक्ति की पत्नी नहीं है, साधारण व्यक्ति की स्त्री नहीं है वो, और भगवान राम की है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उस राम की भगवान की पत्नी है, उसको तुम हरण कर लेकर आया, निश्चित है कि तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए तुमको बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम इसको छोड़ दो। विभीषण ने बहुत समझाया लेकिन उसके बाद भी रावण जो है वो माना नहीं, और रावण ने फिर तुरंत ही विभीषण को लात मार के अपने राज्य से बाहर भगा दिया। बोलता है कि जिस राज्य में रहता है, जिस थाली में खाता है उसी में, इस प्रकार से करते हुए उसको लात मार के विभीषण को भगा दिया राज्य से। और विभीषण ने फिर सोचा कि अभी हमको तो राज्य से निकाल दिया तो चलो हम क्यों नहीं उसी भगवान राम का शरण को ग्रहण करते हैं। तो जब विभीषण निकल के जाने लगे, भगवान प्रभु राम के शरणागत होने के लिए जब जाने लगे विभीषण, तो उस समय जैसे ही भगवान रामचंद्र के जितने भी अनुचर थे, जितने भी सैनिक थे, जामवंत, हनुमान जी इत्यादि बहुत सारे सैनिक, जब इनको पता चला कि लंका से एक राक्षस का एक लीडर आ रहा है, विभीषण जो है वहां के लीडर, राक्षसों का लीडर है, वो लीडर आ रहा है, निश्चित रूप से कुछ खोज खबर लेने के लिए आ रहा है, इसलिए प्रभु राम के पास गए और प्रभु राम के पास जाकर बोले कि प्रभु वहां से वो राक्षस आ रहा है, आप अगर आज्ञा देते तो हम उसको उधर ही खत्म कर देते हैं, निश्चित रूप से हमारा कुछ तो भेद लेने के लिए आ रहा होगा वो। तो प्रभु राम ने बोला कि देखो, जब कोई अतिथि हमारे पास आता है तो अतिथि का हमको स्वागत करना चाहिए, वो अतिथि कितना भी बड़ा हमारा दुश्मन क्यों ना हो। भगवान राम जी ने बहुत सुंदर वहां पे उपदेश दिया भगवान राम ने कि अतिथि हमारा बड़ा दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर हमारे पास वो आता है, हमारे घर में आता है ना, तो उसको आसन देना चाहिए, उसको बैठा कर उसको जलपान कराना चाहिए, वो कितना भी बड़ा दुश्मन हो हमारा, लेकिन अतिथि के रूप में आया, इसलिए हमेशा कहा गया है कि अतिथि देवो भव। तो भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने बोला कि हरगिज ऐसा नहीं करना, अगर हमारे पास आ रहा है तो उसको आने दो, हमारा अतिथि है, स्वागत करो उसका। और विभीषण जैसे ही आया और प्रभु रामचंद्र को तुरंत ही जैसे देखा और तुरंत ही उनके चरण में साष्टांग प्रणाम करके गिर पड़े, प्रणाम किए, और उस समय प्रभु रामचंद्र ने उसको उठाते हुए कहा, उठो लंकेश। सोचिए विचार करिए कि जो लंका को रावण ने इतना घोर तपस्या करके प्राप्त किया, उसको केवल प्रणाम करने मात्र से विभीषण को भगवान ने यूं दे दिया, ऐसा दे दिया, लंका दे दिया। प्रश्न उठा वहां पे जामवंत हनुमान में कि प्रभु ये क्या कर दिया आपने, अभी तक तो हमने लंका में विजय भी नहीं प्राप्त किया। तो प्रभु यही बोलते हैं, देखिए मेरे शरण में जो आता है मैं तो उसको खाली हाथ तो कभी नहीं भेजता हूँ। अगर मान लो हनुमान जामवंत, मान लीजिए कि अगर लंका पे रावण के साथ युद्ध करते करते हम हार भी गए ना, तो हमने इसको वचन दिया है, हमको इसको वरदान दे चुका है, तो रावण लंका का राजा तो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अगर हार गया तो इसको अयोध्या का राजा बना दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र केवल उनके शरण में जाने से ही विभीषण को उन्होंने लंका का राजा बना दिया, और इसी लंका को प्राप्त करने के लिए जो रावण जो था बहुत बहुत ही घोर तपस्या किया हुआ था। तो रावण जो कि शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था, इसलिए शिव जी का भक्त होने के नाते प्रभु राम ने सर्वप्रथम माता दुर्गा का उपासना करके उनसे प्रार्थना याचना, कृपा याचना किया, और उसके बाद फिर भगवान रामचंद्र निकले कहां पे, इसके रावण के साथ युद्ध करने के लिए निकल पड़े, है ना। अभी संक्षिप्त में हम इस युद्ध का जो वर्णन करेंगे कि जब भी रामचंद्र को, भगवान रामचंद्र को ये खबर मिल गया, हनुमान जी खबर लेके आ गए, भाई अभी रावण समझने वाला नहीं है, एक ही अभी रास्ता बच चुका है, वही युद्ध करना। अगर माता सीता को वहां से छुड़ा के लाना है तो युद्ध करना, एक ही रास्ता बच गया और दूसरा कोई रास्ता अभी बचा नहीं है। तो भगवान रामचंद्र ने अभी कहां जाना है सीता को लेने के लिए? लंका, लंका में जाना है। तो लंका में जाना तो ऐसे तो जा नहीं सकते, समुद्र के पार लंका है, महासागर है, उसके पार लंका है। भगवान अगर चाहते तो एक क्षण में लंका पहुंच सकते थे, लेकिन लीला कौन सा कर रहे हैं? नर लीला कर रहे हैं राम। तो नर लीला करने के नाते भी अभी प्रश्न उठा कि अभी इस समुद्र को पार कैसे करेंगे। तो उस समय सारे सैनिकों के साथ प्रभु रामचंद्र उस समुद्र के तट पे पहुंचे, पहुंचकर वो समुद्र देवता की उपासना किया। समुद्र देवता उनसे कि निश्चित रूप से समुद्र देवता अगर प्रकट होंगे तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ तो उपाय तो बताएंगे ही, रास्ता तो देंगे ही। इसलिए भगवान रामचंद्र ने वर्णन है रामचरितमानस में कि उस समय उस तट पे भगवान रामचंद्र ने 3 दिन तक उपवास किया समुद्र को प्रसन्न करने के लिए। विचार करिए कि अगर हमको भगवान को प्रसन्न करना है तो हमको इन उपवासों को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, ध्यान पूर्वक करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम जब तक तपस्या नहीं करेंगे, तपस्या जब तक नहीं करेंगे ना, तपस्या का अर्थ क्या है पता है? तपस्या का अर्थ यही है कि जानबूझकर अपने शरीर को कष्ट देना, ये तपस्या है। ये तपस्या है जानबूझकर अपने शरीर को तकलीफ देना, ये तपस्या है। भगवान रामचंद्र ने उपवास किया 3 दिन तक। लक्ष्मण ने तुरंत बोला प्रभु आप क्यों उपवास कर रहे हैं? अरे आपका सारंग धनुष निकालिए, उसका एक टंकार से देखिए समुद्र देवता तुरंत प्रकट हो जाएगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा। लक्ष्मण ने बार बार मना किया प्रभु क्यों उपवास कर रहे हैं, लेकिन प्रभु ने बोला कि नहीं, जब ही शांति से कार्य हो सकता है तो इसके लिए इतना बड़ा उद्यम क्यों करने का। इसलिए प्रभु रामचंद्र ने उस समय समुद्र देवता की उपासना करते हुए वहां पर 3 दिन तक उपवास किया, लेकिन 3 दिन तक उपवास करने के पश्चात भी समुद्र देवता वहां पे प्रकट नहीं हुए। जब प्रकट नहीं हुए तो प्रभु रामचंद्र ने 3 दिन तक इंतजार किया। जब समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए उस समय भगवान रामचंद्र बहुत क्रोधित हो गए। क्रोधित में वो कहने लगे कि अभी तक ये जो संसार है हमारा, जो प्रेम को देखा है, हमारे सरलता को देखा है, शांत को देखा, आज मैं संसार को दिखाऊंगा कि मेरा क्रोध कैसा है। इस प्रकार से प्रभु रामचंद्र बहुत क्रोधित हो गए कि इतना बड़ा घमंड समुद्र को, 3 दिन तक उपवास किया, 3 दिन पूजा किया, फिर भी प्रकट नहीं हुआ। इसलिए लक्ष्मण को बोलते हैं, वर्णन करते हैं कि लक्ष्मण मेरे जो बाण है सर्प के समान जो बाण है उस बाण को लेकर आओ। और लक्ष्मण जाके बोले प्रभु मैं तो पहले ही बोला था आपको, मैं पहले ही समझा रहा था, क्यों 3 दिन समय वेस्ट किए, पहले ही कर देना चाहिए था, ये पहले ही कर दिया होते तो ये 3 दिन हमारा बेकार नहीं जाता, हम 3 दिन आगे चलते हैं, आपने 3 दिन पीछे कर दिया, प्रभु ये पहले ही करना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी लक्ष्मण को आदेश क्या करे, छोटे थे, आदेश तो बहुत कुछ देते थे लेकिन प्रभु रामचंद्र ने किया नहीं, इसलिए तो अगले जन्म में बड़े भाई बने, क्योंकि उनकी सेवा करने में बहुत बाधाएं आई, बहुत तकलीफ हुआ हमको। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र के क्रोधावेश होकर उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि मेरा बाण को लेकर आओ। और जैसे ही लक्ष्मण उस बाण को लेकर आए, भगवान रामचंद्र ने अपने इस सारंग धनुष के ऊपर जब बाण को चढ़ाया तो उस समय वर्णन है रामचरितमानस में कि जैसे ही भगवान रामचंद्र ने बाण के ऊपर तीर चढ़ाया तुरंत ही समुद्र का जो जल है वो खोलने लगा, उबलने लगा, आग की तरह उबलने लगा। और इतना उबलने लगा कि जितने भी उसके अंदर प्राणी थे, जीवात्मा थे, मछली इत्यादि, मगरमच्छ, जो भी इतने सारे समुद्र के अंदर बहुत सारे जीवात्माएं रहते हैं, वो सब लोग उबल कर बाहर निकलकर तड़प के मरने लगे। इस प्रकार से उबलने लगा केवल उस सारंग धनुष से बाण को चढ़ाने मात्र से तुरंत ही सारे जो समुद्र का जल खोलने लगा। और खोलने लगा जैसे ही देखा वरुण देव, समुद्र के जो देवता वरुण देव थी, कि अभी तो हमारा नाश होने वाला है, तुरंत ही समुद्र देवता एक ब्राह्मण का रूप लेकर प्रकट हो गए। वहां पे ब्राह्मण का रूप लेकर प्रकट हो गए और अपने हाथ में बहुत सारे रत्न, समुद्र के रत्न को लेकर प्रकट हुए समुद्र देवता। तो यहाँ पे बहुत सारे शिक्षाओं को दिया गया है। देखिए कोई भी हम कथा जब सुनते हैं ना, तो उस कथा से हमको शिक्षा प्राप्त करना ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो रंजनम लोक मंडलम हो जाएगा, है ना। आए एंजॉय किए चले गए, कुछ शिक्षा नहीं लिए तो लीला किए, सुने, चरणों को बहुत अच्छा लगा, आनंद लिए और चले गए। लेकिन हर एक लीला से हमको शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे समुद्र देवता जब प्रकट हुए तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान तो क्रोधित थे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में समुद्र के बहुत सारे रत्न को लेकर प्रकट हुए। समुद्र के रत्न को लेकर प्रकट हुए प्रभु राम के सामने। तो वहां पे वर्णन आता है कि जब भी हम कभी भगवान के पास जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना, भगवान के पास कुछ ना कुछ शुद्ध सामग्री लेके ही जाना चाहिए, खाली हाथ कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर खाली हाथ जाते हैं तो भगवान सोचते हैं कि इसके पास कुछ नहीं है, तो चलो इसके पास कुछ ही नहीं रहना चाहिए, है ना। इसलिए कुछ ना कुछ, देखिए कुछ ना कुछ तो लेके निश्चित रूप से जाना चाहिए। इस संसार में जो संपत्ति है ना, इस उपनिषद में वर्णन है, इसा वास्तविदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। इस संसार की जितनी भी संपत्ति है प्रभु का है, हम जो अपना मान रहे हैं सारे चीजें, चल हो अचल हो दृष्टिगोचर नहीं है, जितने भी प्रकार की संपत्ति है वो भगवान की संपत्ति है। इसलिए भगवान की अगर संपत्ति है तो उस संपत्ति को भगवान के सेवा में लगाना चाहिए। यहाँ पे समुद्र देवता प्रकट हुए, बहुत सारे रत्न को लेकर प्रकट हुए भगवान के सामने, और उनके चरणों में उन रत्नों को अर्पण किया, समुद्र के रत्न को लेकर। इसी प्रकार है, देखिए जैसे एक पिता है, उसके दो पुत्र है, पिता के दो पुत्र है, वो पिता क्या करता है कि उन दोनों पुत्रों को 100-100 रुपया देता है ना। एक पुत्र जाता है, 100-100 रुपया दोनों को देता है, और दोनों जाते हैं, उनको बोलते हैं पिता कि आप जाओ कुछ खरीद के खा लो, ले लो कुछ, जो करना कर लो, 100-100 रुपया दोनों को देते हैं। लेकिन एक पुत्र गया 100 रुपया को लेकर सीधा होटल में गया और टेबल में बैठा और अच्छा मेनू थाली खाया और आ गया। लेकिन दूसरा जो पुत्र है उसी 100 रुपये को लेकर किसी स्वीट दुकान पे गया और वहां से कुछ स्वीट खरीद किया और लेकर आकर अपने पिताजी बोला, पिताजी आप भी खाइए, ये आपके लिए लाया मैंने। पिता को मालूम है कि ये जो संपत्ति जिससे स्वीट खरीद के लाया वो संपत्ति मेरा है, लेकिन मेरा ही धन है, लेकिन उस किसको मेरे सेवा में लगाया। तो विचार किए कि हालांकि दोनों एक ही पिता के पुत्र है, लेकिन वो पिता किससे ज्यादा प्रसन्न होगा, जिसने उस 100 रुपये का स्वीट खरीद के लाकर अपने सबको शेयर करके अपने पिताजी को देके पहले आप खाइए फिर मैं खाता हूँ, कितना बड़ी बड़ी बात है, तो कितना खुश होंगे उसके। ठीक उसी प्रकार से उस पिता को मालूम है कि 100 रुपया भी मेरा ही था, लेकिन फिर भी उसने अपना जब समझा तो अपना धन को समझकर उसको हमको हमारी सेवा में लगाया, मतलब अब उसके पास जो धन चला गया वो वापस हमारी सेवा में लगाया। इसी प्रकार इस संसार की सारी संपत्ति ना भगवान की है, तो इन संपत्तियों में से अगर हम भगवान को उनकी संपत्तियों में से कुछ अगर अर्पण करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे कि ये पिता प्रसन्न हुए, उनकी संपत्ति बेटा ने उनकी सेवा में लगाया तो बहुत प्रसन्न होते हैं ना। तो अगली बार क्या करेंगे वो पिताजी, उसको 100 रुपया देंगे लेकिन उसको 1000 रुपया देंगे, है ना, ज्यादा देंगे उनको। तो इसी प्रकार का है, देखिए जब हम भगवान के पास कुछ लेके जाते हैं, भगवान को सब वर्णन है, शास्त्रीय भाषा में वर्णन है कि हम भगवान के पास एक कदम बढ़ाते भगवान 1000 कदम बढ़ा के हमारे पास आते हैं। हम 1 रुपया देते तो वो 1000 में कन्वर्ट होता है, जो भी कुछ देते हैं। इसलिए कभी भी खाली हाथ भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। एक साम्यवादी लोग का जो फार्मूला रहता है कि आपस में सब कुछ बराबर, जो भी आपके पास धन संपत्ति है सब कुछ आपस में बांट लेना चाहिए, है ना, अकेले भोग नहीं करना चाहिए, सबको बराबर बराबर बांट के खाना चाहिए, साम्यवादियों का सिद्धांत है। तो साम्यवादी बहुत प्रवचन कर रहा था, प्रवचन करते करते उसने क्या बोला, प्रवचन कर रहा था, किसी एक व्यक्ति को बोला कि मान लीजिए आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो क्या उसको 2.5 एकड़ आप दान में नहीं दे देंगे दूसरे की सभा में। बोला क्यों नहीं दे देंगे, जरूर दे देंगे। फिर बोला कि अगर मान लीजिए आपके पास 10 गोली राइस है तो आप उसको 5 गोली दान में नहीं दे देंगे। बोला क्यों नहीं दे देंगे भाई, दे देंगे, साम्यवादी का सिद्धांत है, सब कुछ बराबर बराबर बांट लो। और उसके बाद फिर से वो बोला कि अगर मान लीजिए आपके पास घर में 2 गाय है तो आप उसको 1 गाय किसी को दान में नहीं दे सकते। बोला नहीं दे सकता हूँ, वो आश्चर्य हो गया, मैं बोल रहा था अभी तक तो आप तुम बोल रहा था कि आधा दे दूंगा, जमीन है 10 एकड़ है तो 5 एकड़ दे दूंगा, और राइस दस गोनी है तो पांच गोनी दे दूंगा, अभी तो हाँ बोल रहा था, अभी क्या हो गया? बोला प्रभु आपने जो वर्णन कर रहे थे ना वो चीजें मेरे पास है नहीं, तो जो चीज है नहीं उसको देने में क्या प्रॉब्लम है, लेकिन दो गाय हमारे पास है। तो लोगों की स्थिति ऐसी है ना, सब कुछ इस संसार सब कुछ ले जाए, हिमालय की सारी धरती आपका है, ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, सब कुछ जो चाहिए लेके जाइए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी है लेके जाइए, कितना चाहिए डोनेशन लेके जाइए उधर से, लेकिन जेब में जो 100 रुपया है ना हमारा है इसके ऊपर नजर मत मारिएगा, ये स्थिति हमारी है ना। तो ये स्थिति है कलयुग की बदली जा रहा है, लेकिन भगवान के पास जब जाना चाहिए। तो कहते हैं कि उस समय जिस प्रकार से समुद्र के देवता जब प्रकट हुए तो रत्न को समुद्र उन्हीं भगवान के ही रत्न है, संपत्ति भगवान की ही है, लेकिन उन संपत्तियों में से वो भगवान को अर्पण किए, ये सिद्धांत है। एक्चुअली अभी अभी गणेश पूजा गया है ना, अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, अभी लक्ष्मी पूजा आएगा। तो हम गणेश चतुर्थी को जब कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, हमने क्या देखा अंतिम में, क्या सुना हमने अंतिम में, श्लोक बताइए, फिर से याद किया कि नहीं कोई, उस श्लोक याद कर लीजिए। एक्चुअली वो बहुत बड़ा सिद्धांत है, सनातन धर्म क्या है, यही भक्ति क्या है वास्तविक में, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव। तो ये सिद्धांत है, ये भक्ति है, सब कुछ अपनी कायेन मतलब अपना शरीर से, वाचा वाणी से, मन से, इंद्रिय से, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैव और बुद्धि से और अपने स्वभाव से, ये सब कुछ करोति यद्यत् सकलं सनित्यं, करोति यद्यत् जो कुछ भी है, चाहे अपने शरीर से, वाणी से, बुद्धि से, स्वभाव से, जो कुछ भी करते हो सब कुछ नारायण यदि समर्पयेत, तो भगवान नारायण को समर्पण कर देना, यही सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी भक्ति है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम भगवान के पास जाते हैं तो निश्चित रूप से भगवान के पास हमको कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो आज समुद्र के देवता जब प्रकट हुए, प्रकट होकर वो भगवान के लिए बहुत सारे रत्न लेकर आए, रत्न लेकर आए, तो हमको टेंशन लेने वाली विषय नहीं कि वो रत्न लेकर आए, हमारे पास तो इस प्रकार की संपत्ति धन तो है नहीं, इसलिए इस टेंशन को भी दूर करने के लिए भगवान ने भगवद गीता में क्या बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ऐसा नहीं कि हमारे पास धन संपत्ति है तभी हम सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा इस संसार में जो कुछ भी है उसमें से कुछ भी अगर भगवान को देते हैं भगवान प्रसन्न होते हैं, निश्चिंत कर दिए भगवान, पत्रम पुष्पम हम कोई बोल सकता हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास नहीं सेवा करने की शक्ति नहीं है, तो भगवान बोलते पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र अर्पण करो, पत्र तो कर सकते हैं ना, तुलसी जल दल तो अर्पण कर सकते हैं ना, जल तो अर्पण कर सकते हैं ना, एक पुष्प तो अर्पण कर सकते हैं ना, पैसा मान लीजिए पैसा है भी नहीं, अरे रास्ते में किधर जाओगे, तो रामगंज को तोड़ते हैं फूल फ्री में, जाइए फूल तोड़िए और ले जाके दे दीजिए भगवान के चरणों में, पुष्प अर्पण करिए भगवान प्रसन्न होंगे, जिस तरह उस रत्न से भगवान प्रसन्न हुए ना उसी प्रकार उस पत्र से, उस पुष्प से, उस जल से प्रसन्न होंगे भगवान। इसलिए कभी भी खाली हाथ अगर जाते हैं मंदिर तो कभी भी भगवान के पास जाते हैं तो खाली हाथ तो जाना ही नहीं चाहिए, कुछ पत्र पुष्प इत्यादि लेके ही जाना चाहिए। तो इस प्रकार से, लेकिन क्या करें, हमारा दुर्भाग्य सेवा मिलता है तो भी सेवा करते नहीं है, भगवान बिना भोग खाए रह जाते हैं, है कि नहीं, आपका शेड्यूल था आज आपने भंगला भोगा नहीं पहुंचाएगा इनके, देखिए शेड्यूल में आपका है। तो इस प्रकार से कि जब भी हम लोग को भगवान के पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए कुछ ना कुछ तो लेकर जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से चले चले अभी वो डिस्कशन बाद में, हरि बोल हरे कृष्णा। तो भगवान के पास ये वरुण देव जो समुद्र के देवता प्रकट हुए और समुद्र के देवता प्रकट होकर भगवान को प्रसन्न किया और वरुण देव फिर बोलने लगे कि प्रभु अगर आप चाहे तो, अगर आप चाहते हैं तो मैं इस समुद्र का जल को सुखा देता हूँ, अगर आपकी इच्छा है तो इस समुद्र के जल को मैं सुखा दूंगा अगर आपकी इच्छा ऐसी है तो, लेकिन प्रभु इस प्रकृति के नियम को आपने ही बनाया और आप ही इस नियम को तोड़ेंगे तो संसार के लोग क्या करें कहेंगे, अरे भगवान ने जिस सृष्टि को बनाया उसी नियम को तोड़ रहे हैं, है ना, जैसे कोई लीडर नया नियम बनाया अगर उस नियम का खुद वो पालन नहीं कर रहा है तो लोग उसकी निंदा करेंगे, इसलिए वरुण देव कह रहे कि अगर आप चाहते हैं तो मैं समुद्र को सुखा देता हूँ, लेकिन समुद्र को अगर सुखाऊंगा तो इसमें जो लाखों करोड़ों जो जीव है वो जल के भस्म हो जाए, राख हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए प्रभु आप कुछ ऐसा कार्य करिए, आप कुछ ऐसा कार्य करिए। हरि बोल। क्या प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? कुछ दिक्कत? पानी चाहिए? नहीं? तो जब भी कहां पे था मैं? हाँ, अगर आप प्रभु चाहते हैं, अगर आपकी समुद्र को सुखा देना, आपके लिए रास्ता मैं खोल देता हूँ और समुद्र को सुखा देता हूँ, आप चले जाइए आराम से लंका। लेकिन प्रभु आप कुछ ऐसा कार्य करिए जो कि संसार में उस कार्य की महिमा का गुणगान किया जाए, ऐसा कार्य करिए। तो ऐसा कार्य क्या करे? तो कहते हैं कि आप इस समुद्र के ऊपर सेतु बांधिए, समुद्र के ऊपर सेतु को बांध दीजिए। तो ये कितनी बड़ी ग्लोरीज होगा आपको, क्योंकि समुद्र के ऊपर पुल बांधना मतलब सोचिए क्या था, समुद्र को ऊपर पुल बांधना कोई साधारण बात नहीं है। एक सोचिए, एक नदी के ऊपर पुल बांधने में कितना सारा उद्यम करना पड़ता है, कितने कितने महीनों साल निकल जाते हैं, लेकिन समुद्र के ऊपर पुल बांधना है, सेतु बांधना है, ये कोई बड़ा कोई छोटी कार्य नहीं है। आप इस समुद्र के ऊपर अगर सेतु बांध देते हैं तो आपकी महिमा का गुणगान जो है हजारों लाखों लाखों वर्षों तक होता रहेगा। तो इस प्रकार से वरुण देवता के कहने पर, लेकिन समुद्र के ऊपर सेतु बांधेगा कैसे? तो उसमें वरुण देव कहते, प्रभु आपके ही सेना में एक ऐसे बानर है, नल और नीला नाम के जो बंदर है, उसके उसके अंदर एक गुण जो है वो कर सकते हैं। आप उस सेतु को बनाना प्रारंभ करिए। और उसके बाद प्रभु ने उस सेतु को प्रारंभ किया। जितने भी सैनिक थे सारे लोग अपनी क्षमता के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार वो पत्थर पर्वत इत्यादि ला ला के वो करने लगे। और लास्ट में वो जो नल और नील नाम के जो बंदर थे, उस पत्थर के ऊपर प्रभु राम का नाम लिखते थे और उस पत्थर को समुद्र में डाल देते थे और वो पत्थर तैरता था। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पे वर्णन करते हैं कि देखिए, इस संसार जो है ना, ये भव सागर के समान है, पार पाना बहुत मुश्किल है, भव सागर के समान है, लेकिन इस भव सागर को हम तर सकते हैं, पार हो सकते हैं बहुत आसानी से, जब हम अपने जिह्वा के ऊपर भगवान के राम राम के नाम को लिख के करेंगे, लिख देंगे जिह्वा के ऊपर नाम का, भगवान राम के नाम का उच्चारण करेंगे तो हम तर जाएंगे। जिस प्रकार से सोचिए, वो पत्थर पत्थर जनरली पानी में डूब जाता है ना, उस पत्थर जो पानी में डूबने वाला पत्थर है, उसके ऊपर भगवान के राम का भगवान के नाम लिख दिया गया तो पत्थर तैर रहा है, तैर रहा है। इसी प्रकार ये जो संसार है, भव सागर है, दुखों का जो सागर है ना, इस सागर से हमको पार करना है तो केवल एकमात्र आसरा है, वो क्या है? भगवान प्रभु के नाम का शरण केवल, और दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि संसार संसार दावा नल नील लोक है, प्राणाय कारुण्य घना घनत्व, हम दिन का शुरुआत इसी से करते हैं। संसार दावा रखने के समान है, दुखों का आया दुखों का सागर है, इससे पार पाना है तो एक ही मात्र आसरा है, भगवान प्रभु का नाम। क्या नाम? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सोचिए कि वो तो पत्थर था, पत्थर के ऊपर एक नाम लिखा तो पत्थर तैरने लगा, है ना? हम तो पत्थर नहीं है ना, है ना? हम तो पत्थर नहीं, हम तो जिह्वा से कितने नाम उच्चारण कर सकते हैं, इसलिए इस नाम का जब सहारा लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा उद्धार होगा। जब उस पत्थर का उद्धार होगा, वो तैरने लगा, हम तो पत्थर नहीं है, हमारा हृदय तो पत्थर के समान तो नहीं है ना, निश्चित रूप से उस नाम को लेकर उसका बेड़ा पार हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह उद्यम जब चल रहा था, सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार एक एक पत्थर ला ला के इस प्रकार से चल रहा था, बहुत क्योंकि बड़ा कार्य था ना, सेतु बनाना बड़ा कार्य था, सब लोग लगे हुए थे। तो प्रभु राम ने देखा कि अरे वाह, प्रभु राम मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे नाम की इतनी महिमा, नाम लिखने से पत्थर तैरने लगा। प्रभु राम ने जब देखा कि नाम लिखने से पत्थर तैर रहा है, तो प्रभु ने सोचा कि अच्छा है, मेरे नाम की इतनी महिमा है। तो प्रभु ने सोचा कि चलो एक पत्थर हम भी डाल लेते हैं, देखते हैं, मैं तो राम हूं ना। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जो चल रहा है इनको डिस्टर्ब नहीं करने का, है ना? जनरली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई लीडर है, वो सबको सेवा में लगाया हुआ है, सब लोग सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो लीडर सेवा करने आता है तो चार लोग आ जाते हैं, अरे आप मत करिए, हम तो है ना करने के लिए, आप मत करिए, प्रभु ने सोचा कि हाँ पे अगर मैं कुछ करूंगा तो फिर ये डिस्टर्ब होगा ये माहौल, इसलिए प्रभु ने क्या किया थोड़ा दूर चले गए, थोड़ा दूर जाकर और वहां पे उन्होंने बोला कि उधर शांति से डाल के देखता हूँ। एक पत्थर को उन्होंने डाला और पत्थर डूब गया, और जैसे डूब गया प्रभु ने सोचने लगे हाँ कि कोई देखा तो नहीं, आजू बाजू के देखे तो पीछे हनुमान जी खड़े थे और हनुमान जी हाँ देख लिए हनुमान जी पत्थर डाला और डूब गया पत्थर। तो भगवान ने बोला कि हनुमान देखो ये तुम्हारी और मेरी बात है, ये किसी को बताना, उधर अपनी चल रही है तो चलने दो लेकिन लेकिन किसी को ये बात बताओ मत, नहीं तो कल आ जाएगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में आ जाएगा, इसलिए बताओ मत किसी को। हनुमान ने बोला प्रभु ये बात तो संसार को बताने वाली बात है, ये तो अनाउंस करना चाहिए कि जिसको आप तैराना चाहे वो तैर सकता है, जिसको डुबाना चाहे उसको कोई बचा नहीं सकता है, ये तो बात बताने वाली प्रभु इसको संसार को बताना चाहिए, अनाउंसमेंट करने वाली बात है कि जिसको आप अगर डुबाना चाहे तो उसको कोई बचा नहीं सकता है और जिसको आप तैराना चाहे तो कोई डुबा नहीं सकता है, कितनी बड़ी बात है प्रभु, इसलिए तो बताने वाली बात है। इस प्रकार से ये उद्यम चलता रहा है और कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये राम नाम की जो महिमा है स्वयं भगवान भी नहीं जानते हैं। एक पद में लिखते हैं कि कहो कहां लग नाम बढ़ाई राम न सकने राम गुण गाही। भगवान राम स्वयं अपने नाम के गुणगान को नहीं कर पाते हैं, भगवान स्वयं अपने नाम के नहीं कर पाते हैं गुणगान। इस प्रकार से वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास, साक्षात राम भी अपने गुणों का गुणगान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग में वहां पे वर्णन करते हैं चारों युगों में इस नाम की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि चहु युग चहु सुत नाम प्रभाव, इस नाम ये जो नाम की महिमा है ये केवल कलयुग में ही नहीं है, ये चारों युगों में है नाम की महिमा, चारों युगों में, लेकिन कलयुग में विशेष महिमा है। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, पूरा बोलिए, मेरे को दूसरा लाइन नहीं आता इसलिए बोला तो कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम, देखिए भगवान ने इस कलयुग में क्या किया है, नाम के रूप में अवतार लिए हैं, नाम में शक्ति को डाल दिया उन्होंने। इसलिए मैं क्यों बोलता हूँ 7:30 बजे पंचोल तरीके से इधर आइए बैठ के नाम जप करते हैं, भगवान ने नाम के अंदर शक्ति दे दिया है सभी, है ना। हम भावतावश केवल भगवान का केवल जप नहीं करेंगे, हम केवल भगवान का दर्शन करेंगे सेवा में लगे रहेंगे उसका कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है ना। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, एक कृष्ण का जो अवतार है इस कलयुग में, कहते हैं कि कली काले नाम रूपे कृष्ण का जो अवतार है नाम के रूप में हुआ है ना, नाम के रूप में। इसलिए हम जब जप करते हैं तो जप करते समय हमको क्या करना चाहिए, क्या ध्यान करना चाहिए, महामंत्र जो है उसी का ध्यान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान के चरण, कोई खराब बात नहीं है भगवान के चरणों का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, उनके विग्रह का ध्यान करना, कोई खराब बात नहीं है, लेकिन हमको इस नाम में शक्ति है इसलिए उस नाम को ही स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि हरे कृष्ण बोलो तो उसको सुनो, किसकी उसकी शब्द की महिमा है, भगवान ने उस शब्द में उस नाम में अपनी सारी शक्ति अर्पण कर दी है। हम डेली सुबह क्या करते हैं, नाम नाम गारी बहुदान निज सर्वशक्ति, प्रभु आपने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां अर्पण कर दी है, चैतन्य महाप्रभु बताते हैं नाम नाम कार्य बहुदा निज सर्वशक्ति, अपनी जो निज शक्ति खुद की जो शक्ति है इस नाम के अंदर आपने डाल दिया। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि इस नाम में हमारा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, हम इस कलयुग में कृष्ण के नाम भगवान के नाम की बहुत महिमा है। एक घटना मैं बताता हूँ कि द्वारका के समय में, द्वारका लीला के समय में जब भगवान द्वारका लीला कर रहे थे तो उस समय भगवान कृष्ण ने सोचा दान करने के विषय में तो दान करने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि मेरा जितना वजन है उस वजन के अनुसार उतना तौल कर हम संपत्ति ब्राह्मणों में दान दे देंगे ऐसा। तब जब भी भगवान को तराजू के ऊपर तो रखा गया, एक साइड में भगवान बैठ गए और दूसरी साइड में संपत्ति को रखना चालू किया गया, द्वारका का प्रसंग है, द्वारका की लीला है। तो उस समय वर्णन है कि भगवान कृष्ण जब बैठ गए उस तराजू पे एक साइड में, और दूसरी साइड में द्वारका की सारी संपत्ति को रख दिया गया, फिर भी भगवान थोड़ा सा भी नहीं हिले, कैसे हिल सकते हैं? अभी अभी मैंने बताया कि ईशावासी निदम सर्वम यत्किंचा जगत्याम्, अभी उनसे भारी कौन हो सकता है? सारी जब सारी सृष्टि उनके अंदर है तो उनको कौन हिला सकता है? पूरी द्वारिका की सारी संपत्ति उस तराजू के ऊपर डाल दिया गया दूसरे साइड और 1% भी नहीं दे, है ना? अभी टेंशन वाली बात बन गई, अभी दान दिया कैसे जाए, दान कैसे दिया जाए, क्या दान दिया जाए, उनके वजन तो हुआ ही नहीं, सारी संपत्ति डाल दिया गया द्वारिका का, लेकिन बिल्कुल हिला नहीं। तो उस समय रुक्मणी आई, माता रुक्मणी आई और रुक्मणी आकर बोली कि सारी संपत्ति को हटा दो, सब संपत्ति को हटाओ। रुक्मणी ने एक तुलसी पत्र लिया और भगवान का नाम, भगवान का नाम उस पे लिखकर उस तुलसी दल को रखा, तुरंत ही भगवान ऊपर उड़ गए, भारी हो गया वो। इस नाम की जो महिमा है ना इस कलयुग में, द्वारका लीला कलयुग प्रारंभ होने वाला है, इस नाम की महिमा देखिए। इसलिए केवल एक ही आधार है इस कलयुग में, नाम, नाम जप, नाम के बारे में उसको बहुत बहुत सीरियसली रहना चाहिए, इस नाम जप को बहुत ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए, इस नाम को, इसकी बहुत महिमा है, बहुत महिमा। वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, लेकिन हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, दशहरा है ना, रावण को तो मारना है ना, रावण को मार के जाएंगे। तो इस प्रकार से ये उद्यम चालू है, कौन सा, सेतु निर्माण का। उसमें एक गिलहरी, कभी कभी उस ग्रुप में सास ससुर को मैसेज कर देते हैं, गिलहरी की तरह तो सेवा करो, इस प्रकार का कुसुम करते, एक बड़ा नहीं करते तो छोटा तो करो, है तो गिलहरी का, गिलहरी की जब बात आई है तो ये इसकी कथा थोड़ा सा जानते हैं। ये गिलहरी जो थी छोटी सी थी, लेकिन जब इसने देखा कि सब लोग कितना अच्छे से भगवान राम की सेवा कर रहे हैं, सेतु का निर्माण कर रहे हैं, सब लोग सेवा में लगे हुए हैं, कोई वहां पे बचा नहीं था जो कि बिना सेवा, सब सेवा कर रहे थे, तो गिलहरी ने देखा कि सब सेवा कर रहे हैं, चलो मैं भी सेवा करती हूँ। इसने भी अपनी सक्षमता से, भी क्या गिलहरी छोटी सी क्या कर सकती है, एक छोटे छोटे कण को ले जाकर वो भी दे देती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया कि वो गिलहरी इतनी छोटी थी ना, सारे लोग डिस्टर्ब हो गए, अभी क्या करते थे, वो सबके बीच में से जाते थे और किसी का पैर लगता था। वर्णन है कि बानर जो है ना पत्थर लेके चलते हैं, गिलहरी पैर के नीचे आती थी और हड़बड़ा जाते थे, गिर पड़ते तो पत्थर उनके ऊपर गिर जाता था, उनको चोट लग जाता था। अभी ये गिलहरी इतना डिस्टर्ब कर दिया पूरे सारे बंदरों को, सारे लोग को, कि एकदम डिस्टर्ब हो गया, सेतु कार धीमा पड़ गया, रुक गया काम, ऑलमोस्ट रुक गया ये गिलहरी, और सुनने के लिए तैयार नहीं। तो हनुमान जी को बुलाया गया, हनुमान जी ने बोला कि अरे क्यों डिस्टर्ब कर रही है सबको, अरे दब जाएगी बाबू, सब लोग का स्वभाव अच्छा था, आसुरी स्वभाव तो था नहीं कि वो पैर से दाब के चले जाए, ऐसा तो था नहीं, इसलिए सब हड़बड़ा जाते थे, और हड़बड़ा जाते थे तो सेवा रुक जाता था। सर हनुमान जी को बुलाया गया, आप कुछ तो समझाओ इसको, ये सुन नहीं रही है, कुछ समझाओ। तो हनुमान जी समझाते हैं कि तुम क्या सेवा करेगी, छोटे छोटे कण जाने से क्या होगा, क्या होगा, एक काम करो तुम उधर साइड बैठो, तुम्हारे नाम का एक बड़ा पर्वत में तुम्हारा नाम लिख के तुम्हारे नाम से एक बड़ा पर्वत हमें दे देता हूँ तुम्हारे नाम से वो सेवा। तो गिलहरी बोले मेरा सेवा आप क्यों करेंगे, मैं अपना खुद सेवा करूंगी, मैं खुद सेवा करूंगी, मैं सच्चे में मेरे हाथ पर चल रहे हैं, मैं सेवा करूंगी, सुनने के लिए तैयार नहीं, और पूरा एकदम माहौल डिस्टर्ब होगा और सेतु का कार्य बंद पड़ गया और फिर भगवान राम को बुलाया गया। अभी आप ही समझाइए इसको, कोई नहीं समझा था, पूरा सेतु का कार्य रुक गया, आप समझाइए इसको। तो उस समय प्रभु रामचंद्र उसको बोलते हैं क्या क्यों डिस्टर्ब कर रही लोगों, तो गिलहरी बोलते प्रभु मैं कहां डिस्टर्ब कर रही हूं, सब लोग बोल रहे यही बात, सब लोग आप भी यही बात बोल रहे हैं, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं कहां डिस्टर्ब कर रही हूं, मैं तो अपनी क्षमता के अनुसार सेवा कर रही हूं ना, जितना हो सकता है मैं उतना तो सेवा कर रही हूँ, मेरी क्षमता के अनुसार, मेरी इतनी शक्ति तो मैं कर रही हूँ सेवा। तो प्रभु बोले अच्छा तुम सेवा कर रही है, हाँ प्रभु मैं सेवा कर रही हूँ, देखिए मैं कितनी बड़ी सेवा कर रहा हूँ मैं, कि ये जो लोग पत्थर डाल रहे हैं ना, ये पत्थर डालने के बाद पत्थर तैर तो रहा है लेकिन तैर के इधर उधर भाग जा रहा है, तो मैं जो मिट्टी डाल रही हूँ ना, वो मिट्टी सीमेंट का काम कर रहा है, उसको दबा के एक साथ में रख रहा है, तो कितनी बड़ी कार्य मैं कर रही हूँ। बात को सुनकर ना जितने भी बंदर थे भगवान राम सबका हृदय जो है ना एकदम ये हो गया कि इतनी बड़ी बात कहा गिलहरी ने। उस समय प्रभु रामचंद्र ने उसको उठाकर अपने कंधे पे बैठा लिया, बोले कि ये सारे जितने लोग बंदर सेना है ना, इन लोगों का जगह जो मेरे चरणों में है, लेकिन तुम्हारा जगह जो है ना वो मेरे कंधों पे, मैं तुम्हारे को जगह देता हूँ। तो उस गिलहरी को उठा के अपने कंधे पर रख लिया प्रोग्राम, उसको वो जगह दे दिया, कंधे और पे रख दिया। वैसे भी युधिष्ठिर को कर रही थी, इसलिए उसको ऊंचा स्थान दे दिया। तो इस प्रकार से एक गिलहरी ने भी सेवा किया वहां पे, और इस प्रकार से सब लोग मिलके उस सेतु का निर्माण किए, और सेतु का निर्माण करके उस पुल का निर्माण खत्म हुआ, और उस पुल के ऊपर से सब लोग, सेतु के ऊपर से सब लोग जाने लगे। कहां पे, कहां पे जाने लगे? लंका। तो अभी गोस्वामी तुलसीदास जी उस सेतु के ऊपर भी चल रहे हैं ना, तो बहुत सुंदर शिक्षा वाली बात करते हैं वहां पे, क्योंकि सेतु जो बना था अभी इतना मेहनत करके बना रहा था ना, उससे हाईवे नहीं बना था, इतना बड़ा हाईवे 6 लेन हाईवे 4 लेन नहीं बना था, एक सिंपल सा रास्ता बनाया गया था, क्योंकि उसको भी बनाने में कितना टाइम लगा। तो रास्ता छोटा था, पतला था रास्ता, सब लोग जा रहे हैं, प्रभु रामचंद्र आगे जा रहे हैं, लेकिन जितनी भी सेना थे ना, सब लोग की यही इच्छा था कि सब प्रभु रामचंद्र को देखते हुए चले, लेकिन ये संभव कैसे हो सकता है? सेतु पतला है और सब लोग, इतने सारे सेना है पीछे, और सब लोग एक साथ में कैसे देख सकते प्रभु रामचंद्र को, हो ही नहीं सकता। कभी कभी ऐसा देखते हैं ना कि जब भी महाराज जी आ जाते हैं, कोई सन्यासी आ जाते हैं, सब भक्त लोग केवल उनको देखना चाहते हैं, कितनी भी भीड़ हो, लेकिन सब लोग उनको देखना चाहते हैं, देख के चलना चाहते हैं। ऐसे ही सारे वानर सेना सब लोग प्रभु के दर्शन करके चलना चाहते थे। तो वहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि वो जो सेतु था तो पतला, लेकिन ये जो सब लोग भगवान रामचंद्र का दर्शन करते हुए जाना चाह रहे थे, वो सबकी इच्छा पूरा हुआ, सब लोग दर्शन करते हुए गए। कैसे दर्शन किया वर्णन करते हैं कि जितने भी अभी सेतु बना है, सेतु में, सेतु के दोनों बाजू समुद्र के जितने भी जीव थे ना, वो सब भगवान का दर्शन करने के लिए, कितना अच्छा मौका मिला है ना, ऐसा मौका कब मिल सकता है बताइए, कितना सब लोग बाहर निकल के उस सेतु के पास इकट्ठा, सब पूरा लाइन से इकट्ठा होकर दर्शन कर रहे थे। और वर्णन है कि वो सेतु इतना बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, क्यों? क्योंकि जितने भी बंदर थे ना, कभी उन मछली के ऊपर चढ़ रहे हैं, कभी इधर चढ़ रहे हैं, तो बड़ा बन गया ना, सब लोग ऊपर तैर रहे हैं, उसके ऊपर से सब लोग जा रहे हैं और प्रभु राम के दर्शन कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है, देखिए समुद्र में एक ये बड़ी मछली छोटी मछली को खा के जीती है, ऐसे सारे जो है ना छोटे बड़े बड़े लोग छोटे लोग को खा जाते हैं, उनका जीवन तो ऐसे ही होता है ना, उनका जीवन यापन ऐसे ही होता है, अपनी भूख तो वैसे ही मिटाते हैं। मगरमच्छ है ना, वो भी किसी को खा जाता है, बंदर को खा जाता है, मगरमच्छ बंदर को खा जाता है, लेकिन ये बंदर मगरमच्छ के पीठ पे जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहां पे वर्णन करते हैं कि क्यों ऐसा था, वहां पे वो बताते हैं कि ऐसा इसलिए था क्योंकि सबका जो लक्ष्य था ना एक था, सबका लक्ष्य एक था, भगवान राम थे, केंद्र बिंदु एक था, केंद्र बिंदु एक होने के नाते किसी को कोई समस्या नहीं, उसके ऊपर से जा रहे हैं बंदर लोग, लेकिन किसी को कोई तकलीफ नहीं। देखिए ये विचार करिए कि जब लक्ष्य एक नहीं रहेगा ना, वहां पे निश्चित रूप से कलह होगा। आज देख सकते हैं मुसलमान पति पत्नी के बीच में कलह, भाई भाई के बीच में कलह, क्यों? क्योंकि एक को हम टीवी देखना है, एक को भी टीवी देखना है, एक को सास बहू का देखना, तो उसको इसको देखना, उसमें झगड़ा हो जाता है ना, क्योंकि लक्ष्य एक नहीं है। अगर लक्ष्य एक रहेगा, भगवान कृष्ण भगवान को केंद्र बिंदु बना के रखेंगे, लक्ष्य एक रहेगा, तो निश्चित रूप से कभी कलह आएगा ही नहीं। तो इस संसार में जो लोग शांति के साथ रख रहे हैं ना, बड़े बड़े लेक्चर देते हैं पॉलिटिशियन, शांति शांति लाएंगे शांति लाएंगे, ये शांति कभी भी नहीं आ सकती है, शांति केवल जब तक लक्ष्य एक नहीं होगा तब तक शांति नहीं आ सकती है। तो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि सबका लक्ष्य जो था ना एक था, प्रभु राम थे, उनके दर्शन करना था, इसलिए कोई एक दूसरे का जो स्वभावगत, सोचिए कि स्वभावगत उनका जन्म से एक दूसरे के प्रति उनका संबंध खराब ही रहता है ना, बड़े मछली छोटे को खा जाता है, स्वभावगत मगरमच्छ बंदर को खा ही जाता है, लेकिन ये सब अपने अपने स्वभाव को, जो जन्मजात स्वभाव था उस जन्मजात स्वभाव को भूल गए, क्योंकि लक्ष्य एक था, प्रभु राम थे, लक्ष्य एक होने के कारण सब लोग चल रहे थे। तो इस प्रकार से सेतु बना और सेतु पर चल सारे सब लोग चल के अभी सेतु को समुद्र को पार करके भगवान कहां पहुंचे? लंका। लंका पहुंच गए और लंका में क्योंकि जब भी पहुंचे सब लोग थक चुके थे, इतना बड़ा सेतु का निर्माण किए और इसलिए उन्होंने उस पार जाके उस समुद्र के तट पे जो पर्वत था उस पर्वत की तलहटी में उस रात उन लोगों ने विश्राम किया। सारे वानर सेना लोग प्रोग्राम सारे लोग ने विश्राम किया वहां पे, उस रात विश्राम किया। विश्राम करने के पश्चात जब सुबह हुआ तो प्रभु रामचंद्र ने मीटिंग बुलाया। उस समय भी मीटिंग बुलाते थे इष्ट, लेकिन इष्ट गोष्ठी, इसको इष्ट गोष्ठी बोलते हैं। ये इष्ट अपने इष्ट गोष्ठी मतलब अपने इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए जो गोष्ठी बनती है इष्ट देव की प्रसन्नता के लिए उसको इष्ट गोष्ठी कहते हैं, है ना। तो प्रभु रामचंद्र ने इष्ट गोष्ठी बुलाया, इष्ट गोष्ठी सुबह सुबह बुलाया और इष्ट गोष्ठी बुलाकर प्रभु रामचंद्र ने एक आखिरी प्रस्ताव रखा। प्रभु रामचंद्र ने देखिए भगवान सोचिए युद्ध के उद्देश्य से सेतु बनाकर इतना सारा उद्यम करके उस पार पहुंच गए, लेकिन उस पार जब युद्ध करने की बात आई तो उन्होंने इष्ट गोष्ठी करके एक अंतिम प्रस्ताव रखा और उन्होंने बताया कि एक अंतिम प्रस्ताव को लेकर रावण के पास जाए कि अगर अभी भी रावण अगर सीता को छोड़ देता है तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। ये अंतिम प्रस्ताव भगवान रामचंद्र ने उस रावण के लिए दिया। लंका में पहुंचने के बाद प्रभु राम लास्ट तक उन्होंने सोचा कि युद्ध ना हो छोड़ दे। तो इस प्रकार से इस प्रस्ताव को सुनकर ना जितने सैनिक ना और सब प्रभु राम तो जो कृपा है कितना कृपा है कृपालु है कितना भगवान इस कृपा को देख रहे हैं। सोचे कि इतना मेहनत करके आए किस उद्देश्य से युद्ध करना है और आके वो शांति का फिर से प्रस्ताव रख रहे हैं। तो इस सारे ना ये जो प्रस्ताव रखा ना सारे लोग को बहुत अच्छा लगा, सब लोग इस प्रस्ताव का गुणगान करने लगे। लेकिन प्रश्न उठा कि रावण के पास जाएगा कौन, ये तो ऐसा ही होगा कि शेर के गले में घंटी बांधेगा कौन, है ना, पता जानते हैं ना सब बिल्लियों का मीटिंग हुआ आके खा जाता है शेर, कभी भी पता ही नहीं चलता कभी भी आके हड़प जाता है। तो इससे बचना है कैसे बचना है, तो किसी ने एक ने बोला बुद्धि का उपयोग करते हुए, अरे क्या करें देखो आता है तो पता नहीं चलता ना उसके गले में घंटी बांध लेते हैं, घंटी बांध देते हैं जब आएगा ना घंटी बजेगा तो हम भाग जाएंगे। तो फिर किसी ने उस बिचारे बोला भाई वो तो ठीक है बहुत अच्छा विचार है सुविचार है सब लोग ताली मारे लेकिन शेर के गले में घंटी बांधेगा कौन। यही बात है यहाँ पे, प्रभु ने प्रस्ताव तो दे दिया लेकिन उसके पास जाएगा कौन। तो उस समय वहां पे बुजुर्ग कौन थे, जामोहन जी थे, उनकी सलाह से उन्होंने बोला कि एक ही व्यक्ति को भेज सकते हैं वह है बाली पुत्र अंगद, उसको भेजते हैं और वो लेके जाएगा शांति का प्रस्ताव फिर से एक बार। और उस समय वर्णन है कि अंगद जी वहां से निकल चाहे, अंगद जी निकल कर वो रावण के दरबार में पहुंचे। वर्णन है कि अंगद जी सीधा रावण के दरबार में पहुंच गए, कोई उनको नहीं रोका। पता है क्यों नहीं रोका, कोई लंका के कोई अन्य आश्रित सत्या जैसे कि अभी हनुमान जी जब गए थे तो उनको लंका में पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग को मारना पड़ा, बहुत युद्ध करना पड़ा, बहुत सारे राक्षस आ गए, ये हुआ, बहुत सारे घटनाएं घटी। लेकिन यहाँ पे वर्णन है कि अंगद जब शांति का प्रस्ताव लेके जब लंका में गए तो सीधा लंका में रावण के पास पहुंच गए। क्यों पहुंच गए, क्योंकि जितने भी लंका के दूसरे अन्य राक्षस थे बोले कि भाई अब पंगा नहीं लेना है, एक बंदर इससे पहले आ गया था, एक आ गया था और उसने तो हमारा पूरा सत्यानाश कर दिया, अब पूरा सबको जला कर राख कर दिया, अब इस दूसरे बंदर की शक्ति को पहले अनुभव कर चुके थे वो लोग, इसलिए बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल विचार ही नहीं किया कि इसको रोका जाए कौन है, पूछताछ भी नहीं किया जाए, सब दूर ही रहे, है ना। क्योंकि जब हनुमान जी को जब रावण ने बोला कि इसके बंदर को पूछ बहुत प्रिय है इसलिए उसके पूछ में आग लगा दिया जाए, तो जब आग लगाने की बारी आई ना तो उसमें हनुमान जी ने बहुत पूछ को लंबा करने लगे, लंबा करने लगे तो राज दरबार में से और भी कपड़ा थे वो सब खत्म हो गया, तो सारे लंका के जितने भी वासी है सब लोगों ने उस पूछ में सब लोगों ने कपड़ा बना सब लोगों ने सेवा किया था, इसलिए हनुमान जी ने देखा था इसलिए ऐसा वर्णन की और राज दरबार ने लंका को राख के जला कर राख कर दिया था क्योंकि सब लोग ने आग लगाया था, इसलिए हनुमान जी ने सबके घर में आग लगा दिया था और इसको इस भली बात ही इस बात से परिचित थे सारे लोग, इसलिए किसी ने अंगद को रोकने की हिम्मत नहीं किया। एक बार जलाया तो उसको बनाने में सोचिए कि घर में आग लग गया सब कुछ नष्ट, उसको वापस रिनोग्रेट करने में, वापस घर के अंदर सारा फर्नीचर, टीवी, पंखा, कूलर इत्यादि भरने में कितना मेहनत का काम है, हम विचार कर सकते हैं। इन लोगों ने उस मेहनत को करके फिर से कुछ बनाया था जिसको हनुमान जी ने जला दिया था, इसलिए वापस वो कार्य तो करना ही नहीं है। इसलिए किसी ने नहीं रोका अंगद को, सीधा अंगद रावण के पास पहुंच गया। और रावण के पास पहुंचते ही देखिए, सबसे पहले जब दरबार में एंट्री मारे अंगद जी, तो रावण जैसे ही उसको देखा, सबसे पहला उसने अपराध क्या किया कि उनको पूछा ही नहीं, उनको आसन ही नहीं दिया बैठने के लिए। क्योंकि जब ही अतिथि आते हैं, मैं बोला ना, दुश्मन भी रहे तो उसको आसन देना चाहिए, बैठाना चाहिए, उसको पानी पिलाना चाहिए। लेकिन इस पहला अपराध किया अंगद जी, बोले कि क्योंकि भक्तों को इस सबसे कुछ लेना देना तो रहता नहीं है, बोले कि भाई तुम दो या न दो, हम तो आसन साथ में लेके चलते हैं, इसलिए अपनी पूछ को इतना बढ़ा कि वो रावण जी ऊंचा आसन बना दिया और उसके ऊपर जाके बैठ गए। और बैठ के क्या करने आए थे, शांति का प्रस्ताव, इसलिए प्रवचन स्टार्ट किए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्टार्ट कर दिए प्रवचन वहां पे, बैठ के इतने बड़े आसन पे और प्रवचन स्टार्ट कर दिए। और उस समय रावण सुन रहा है, रावण को बोल रहा है कि देखो अभी भी तुमको मौका है, लास्ट प्रभु राम कितने कृपालु, उनकी कृपा का वर्णन करने लगे कि कितने कृपालु, सोचो कि इतना मेहनत करके तुमसे युद्ध करने के लिए आए, लेकिन अंतिम प्रस्ताव तुमको फिर से दिया उन्होंने, समझ जाओ नहीं तो तुम्हारा नाश 100% पक्का है, क्योंकि प्रभु राम आ चुके हैं सैनिक, सारे सैनिकों के साथ अभी तुम्हारे लंका में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए मेरा हे रावण मेरा विनती है तुम समझ जाओ और मेरे साथ सीता को दे दो, मैं लेकर जाता हूँ और सब कुछ बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अंगद के लाख समझाने के बाद भी रावण समझा नहीं, उल्टा उसने आदेश दिया, उसके दरबार में जितने भी और भी असुर थे सबको आदेश दे दिया कि इस बांदर को मार डालो। उसको तो पूछ मैं आग लगाने की बात कहा था, लेकिन इनको तो बोला कि इस बानर को मार डालो पकड़ के, ये शांति का प्रस्ताव लिखा है, मार डालो इसको। अंगद तुरंत ही उस आसन से नीचे उतरे, बोले मारने की बात करता है तुम, बोलता है मारने की बात करता है, अरे मारना तो छोड़ो दूर की बात, तुम्हारे सभा में कोई ऐसा एक वीर दिखाओ। तो क्या कि उतरते ही अपने पैर को ना जमीन पे गाड़ दिया उन्होंने, चाप दिया पैर को और बोला कि हे रावण तुम मारने की बात करता है, तुम्हारे सभा का कोई एक सैनिक, एक कोई भीर हो इस सभा में ना, इस मेरे पैर को तुम हिला के दिखाओ, अगर पैर को हिला दिया ना, मैं तुमको वादा करता हूँ कि मैं सीता को छोड़कर प्रभु राम को लेकर वापस चला जाऊंगा। मेरे को, मैं जब पढ़ रहा था सोचे कि संगत को कितना विश्वास रहा होगा भगवान के प्रति, कितना विश्वास रहा होगा, विचार करिए, पैर हिला के दिखा, उठाने मारने की तो बात छोड़, पैर हिला के दिखा, हिला दिया ना, मैं वादा करता हूँ कि सीता को छोड़ के चला जाऊंगा और प्रभु रामचंद्र को वापस लेके चला जाऊंगा मैं, अभी भी तुम्हारे पास समय है। और रावण ने बोला कि कितनी अच्छी बात है, सब लोग लग जाए हिलाने में, युद्ध ही नहीं करना पड़ेगा, शांति का प्रस्ताव है, शांति से सब कुछ हो जाएगा, युद्ध नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से रावण ने आदेश दिया कि लाओ पैर को हिलाओ, क्या मार डालो इसको। तो सारे जितने भी सैनिक थे, जितने भी वीर थे ना, सब लोग उस पैर को हिला हिला के थक गए, पैर बिल्कुल भी हिला नहीं, इतना तेजी से गाड़े, और सब परेशान होके सब चले गए भाग के। और अंत में रावण आया और रावण जैसे ही उस पैर को पकड़ने गया और तुरंत ही अपने आप से अंगद ने हटा लिया, बोला मूर्ख तुमको इतना समझाया, अरे तुम चरण में अगर गिरना है किसी को, अरे उस राम प्रभु रामचंद्र के चरण में गिरो, मैं गारंटी देता हूं कि वो प्रभु राम तुमको जीवन दान दे देंगे, क्योंकि मैं प्रभु राम की महिमा को जानता हूं, तुम उनके शरणागत होगे तो उनके पैर पकड़ लो, एक बार तुमको जीवन दान दे देंगे वो, वरना ही पैर तो मेरे पैर में क्यों पड़ रहा है, जाके प्रभु राम के चरण में पड़ो, उनके उधर उधर तुमको जीवन दान मिल जाएगा। इस प्रकार से अंगद ने वहां पे प्रस्ताव तो रखा, लेकिन रावण नहीं माना। वो वहां पे ये भी बताया कि रावण तुम कितना मूर्ख है, कितना बड़ा, विचार करो कि उस प्रभु राम का मैं भक्त हूं, उस प्रभु राम का भक्त जो आया, तुम उसका एक बाल बाका नहीं कर पाया, पूरा थोड़ा सैनिक एक बाल भी बाका नहीं कर पाया, सोचिए कि उस प्रभु का तो मैं भक्त हूं,
वो प्रभु कितने शक्तिशाली रहेंगे, इसलिए अभी भी तुम समझ जा, लाख समझाए उसके बाद भी होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले जब विनाश व्यक्ति का आ जाता है ना उसकी बुद्धि जो है ना विपरीत हो जाती है। इसलिए वहां पे गोस्वामी जी कहते हैं कि रावण पूरे संसार में ना रावण जैसा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि रावण को मामा मारीच ने समझाया था, मामा मारीच ने ये समझाया था कि अरे उस जब मामा मारीच को जब पता चला, जब उसको सेवा दिया ना कि जब तुम हिरण बन जाओ उसको हरण करना है, मारीच ने उस समय बताया था तुम किसके इधर पंगा लेने जा रहे हो, अरे उसने एक बिना फण का बाण मारा था, मतलब धनुष में चढ़ाए बिना एक बाण को केवल मारा था, मैं कितने योजन दूर जाके गिरा था, सोचो जब बाण जब चलाएगा तो क्या हालत हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन उस मारीच के समझाने, मामा मारीच ने समझाया नहीं समझा, उसके बाद पत्नी मंदोदरी ने समझाया नहीं समझा, उसके पुत्र प्रहस ने समझाया कि पिताजी मत करो, छोड़ दो सीता को, माता सीता को छोड़ दो नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, प्रहस्त ने समझाया नहीं समझा, विभीषण ने समझाया नहीं समझा, हनुमान ने समझाया नहीं समझा, अंगद ने समझाया नहीं समझा, प्रभु ने दो दो तीन तीन बार प्रस्ताव दिया नहीं समझा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण जैसा मूर्ख दुनिया में होगा ही नहीं कोई, इतने लोग को समझाने के बाद भी समझा नहीं तो उस व्यक्ति का विनाश तो होगा ही पक्का। इस प्रकार से अभी कुछ नहीं, अंगद जी वापस भगवान के पास गए, बोले प्रभु अब कोई चारा नहीं, एक ही है बस, अभी रावण को आपका बाण ही समझा सकता है, इसलिए प्रभु अभी हम निकलते हैं युद्ध के लिए। इस प्रकार से नवरात्रि का जो पहला दिन था उस दिन से युद्ध प्रारंभ हुआ है ना, दुर्योधन और राम में है ना, रावण में। तो इस प्रकार से नवरात्रि के पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन से युद्ध शुरू हुआ और 10 दिन तक युद्ध चला, दशहरा के दिन रावण का वध हुआ। अभी ये 10 दिनों का जब युद्ध का वर्णन सुनेंगे ना, बहुत सुना है, सुना है, ऑलरेडी लेट हो रहा है, अभी खत्म करना है। ये 10 दिनों का वर्णन, मैं ये बोल रहा था ना, ये जो नवरात्रि का जो विशेष समय है ना, लोग इसको इतनी पास टाइम भरे पड़े हैं ना, इसको सुनने में नहीं लगाते हैं। वो 10 दिन का जो युद्ध चला ना भगवान राम और रावण में, उस 10 दिन का युद्ध जो है ना, हमारे बहुत शिक्षणीय बातें हैं उसमें, बहुत सारे से किस प्रकार से युद्ध किया। लेकिन भगवान ने जब युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और एक एक दिन रावण मर ही नहीं रहा है, रावण को मारे एक सर कट रहा है वापस सर जुड़ जा रहा है, हाथ कट रहा है, 10 सर 20 हाथ थे उसके, 20 हाथ और 10 सर थे, जो भी अंग कटता था वापस जुड़ जाता था वो। 10 दिनों तक लगातार युद्ध चला। रावण इसलिए नहीं मर रहा था कि रावण की नाभि में ना एक अमृत कलश था जिसके कारण उसकी मृत्यु नहीं होगी ऐसा था। और प्रभु रामचंद्र को क्या ये बात नहीं मालूम था? मालूम था। लेकिन प्रभु रामचंद्र ने विभीषण की एक अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे, विभीषण की अंतिम परीक्षा लेना चाहते थे। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी परीक्षाएं आती है, कभी कभी समस्याएं होती है ना, तो हमको उसको परीक्षा समझना है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं हमारी। तो विभीषण की एक अंतिम परीक्षा प्रभु राम लेना चाहते कि विभीषण, क्योंकि एक बात जो था ना विभीषण को पता था कि ये रावण के अंदर जो नाभि में अमृत कलश है, जब तक इस अमृत कलश को सुखा नहीं देंगे तब तक रावण की मृत्यु नहीं होगा, ये बात विभीषण को पता था। इसलिए प्रभु रामचंद्र वेट कर रहे थे कि विभीषण क्या बोलता है। और जब अंतिम दिन आया, अंतिम दशहरा का दिन, आज का दिन जब आया, उस समय भीषण बोला प्रभु बस, अभी बस हो गया, अभी आप इसको मारिए, ऐसा नहीं मरने वाला प्रभु, इसके नाभि में जो अमृत कलश है आप उसको सुखा डालिए, उसको पहले अमृत कलश को उसको निकालिए, तब जाके इसकी मृत्यु होगा। भीषण परीक्षा में पास हो गए। तो इस प्रकार से विभीषण ने जब बोला कि प्रभु आप पहले उसके अमृत कलश को सुखा दीजिए, नहीं तो उसकी मृत्यु होगी नहीं, उस समय भगवान रामचंद्र ने आज के दिन दशहरा के दिन रावण का वध करने का सोच लिया कि अभी रावण को खत्म करना है। इसलिए तुरंत ही उन्होंने अगस्त ऋषि के द्वारा दिए हुए बाण को मंगाया, बाण को अगस्त ऋषि के द्वारा दिए हुए बाण को, और वर्णन है कि एक साथ में प्रभु रामचंद्र ने 31 बाणों को छोड़ा रावण को मारने के लिए, कितना 31 31 बाणों को एक साथ में प्रभु रामचंद्र ने छोड़ा, 10 बाण जो है 10 सिर को काटे और 20 बाण जो है उसके हाथ को काट दिए और 31वां बाण जो है उसके नाभि में उसके कलश को सुखा दिया। एक साथ में अगस्त ऋषि के दिए हुए धनुष, अगस्त ऋषि के दिए हुए तीर से सारंग धनुष पर चढ़ाकर प्रभु रामचंद्र जी 12 एक साथ में 31 बाणों को, तो उस समय वर्णन है कि उस समय तुरंत ही रावण जो है ना एक पहाड़ की तरह गर्जना करते हुए पृथ्वी पर गिर गया। बहुत बड़ी आसुरी शक्ति का आज के दिन विनाश हुआ। लेकिन याद रखिए कि वो त्रेता युग था और वहां पे रावण प्रत्यक्ष रूप से था, लेकिन आज कलयुग में हर घर घर में रावण है। ये बड़ी बड़ी समस्या है, घर घर में रावण, हमारे हृदय के अंदर रावण बैठा हुआ है। अभी इसका कंक्लूजन अभी सुनिए। रावण देखिए वहां प्रत्यक्ष रूप से रावण था और उसको मारने के लिए भगवान रामचंद्र थे, लेकिन आजकल घर घर में जो रावण है इसको कैसे मारेंगे, हमारे हृदय के अंदर जो रावण बैठ चुका है इसको कैसे मारेंगे, तो है ना। तो क्यों बोलते हैं कि संसार के आज के लोग सब लोग रावण है, क्यों रावण है? रावण ने क्या किया? भगवान रामचंद्र की पत्नी को हरण करके अपने पास रखा, राम को छोड़ दिया और पत्नी को हरण कर लिया। इसी प्रकार अभी इस संसार के लोग क्या करते हैं, लक्ष्मी को रखते हैं और भगवान को छोड़ देते हैं। अभी लक्ष्मी पूजा आएगी ना, तो लक्ष्मी पूजा आएगी तो उस समय लक्ष्मी को रखेंगे, नारायण को रखते ही नहीं साथ में, नारायण को नहीं रखते हैं, लक्ष्मी को, केवल लक्ष्मी की पूजा करते हैं इस संसार के। इसलिए कहते हैं कि संसार के सारे लोग रावण है, रावण की प्रवृत्ति। रावण को राम नहीं चाहिए था, कौन चाहिए था? सीता चाहिए था। इस संसार के लोग को किसी को भगवान नहीं चाहिए, नारायण नहीं चाहिए, लक्ष्मी लक्ष्मी पूजा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावनामृत के जितने भी सारे भक्त लोग हैं ना, ये हनुमान, सबको हनुमान बोलते हैं कि हनुमान जी है। हनुमान जी का क्या कारण था? इस सीता को, इस लक्ष्मी को उसके चंगुल से छुड़ाकर भगवान की सेवा में लगाना। तो आजकल के भक्त लोग क्या कर रहे हैं, इस लक्ष्मी को जिसको आसक्त पकड़ के बैठे हुए हैं उसके पास जाके उस लक्ष्मी को लाकर भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं। आजकल के जो भक्त हैं वो हनुमान जी की तरह हैं, प्रभुपाद जी इस बात को वर्णन करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो घर घर में रावण है, लेकिन देखिए सब लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी पूजा करते हैं, लक्ष्मी को पकड़ के बैठते हैं, लेकिन वो मूर्ख लोग हैं, केवल लक्ष्मी को पकड़ते हैं। देखिए विचार करिए, थोड़ा सा भी विचार करेंगे, कोई बुद्धि लगाएगा ना, तो लक्ष्मी देखिए, लक्ष्मी पतिव्रता स्त्री है ना, लक्ष्मी की पूजा करता है, लक्ष्मी पतिव्रता नारी है ना, वो अपने एक पतिव्रता जो स्त्री होती है अपने पति को छोड़कर कहीं और नहीं जाती है, उनके पीछे पीछे उसके चिन्हों में ही चलती है। तो लक्ष्मी पतिव्रता स्त्री होने के नाते कभी भी जो उनको केवल लक्ष्मी को जो चाहता है, नारायण को नहीं चाहता है, केवल जो लक्ष्मी को चाहता है ना उसके घर में रुकते ही नहीं है। लोग खींच के तो लाते हैं लक्ष्मी को, लेकिन बोलते हैं ना अरे धन बहुत आता है लेकिन चला जाता है, सभी है ना, आते हैं ना सब लोग, धन तो बहुत आता है लेकिन पता नहीं किधर चला जाता है, पानी की तरफ बह जाता है, बह जाएगा ना। लक्ष्मी को पकड़ के लाया, नारायण को छोड़ दिया, उसके पति को छोड़ दिया, तो भाग के तो वापस चली जाएगी ना, तो कितना दिन पकड़ के रखोगे, चली जाएगी। इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना वो नारायण को चुनते हैं, भगवान को चुनते हैं, कृष्ण को चुनते हैं। और कृष्ण नारायण को अगर चुन लिया तो लक्ष्मी तो पतिव्रता है ना, तो पीछे पीछे भाग के आएगी। ये सिंपल सा सिद्धांत है, इस बात को लोगों को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम करते हैं तो नारायण की पूजा, तो ये लक्ष्मी अपने आप आ जाती है। तो ये जो विशेष रूप से जो मैं इस बात को बता रहा था कि जो रावण जो हमारे हृदय के अंदर बैठा हुआ है, इस कलयुग में घर घर में रावण हृदय के अंदर जो बैठा हुआ है, इस रावण को मारने के लिए देखिए, उस समय स्थूल रावण था इसलिए प्रभु राम सक्षम थे मारने के लिए, है ना, उस रावण को। लेकिन जो हृदय के अंदर जो ये रावण सूक्ष्म रूप से बैठा हुआ है, कहते हैं कि इस सूक्ष्म रूप से जो हृदय के अंदर जो ये रावण है, इसको हम भगवान, इसको मारने के लिए भगवान राम की जरूरत नहीं, भगवान राम के नाम की जरूरत है। अगर हम नाम को सहारा लेते हैं, नाम की जप करते हैं, तो ये जो अंदर बैठा हुआ जो रावण है ना, इसका हनन हो जाएगा, इसका दमन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम को नाम का सहारा लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये दशहरा का बहुत पवित्र दिन है। मैंने सोचा कि कुछ पास टाइम भगवान के बारे में बताया जाए, क्योंकि रावण का भी दहन करते लोग, शायद कल दहन करेंगे, आज दहन करते हैं, आज कर रहे हैं, कर दिया, संध्या समय में कर देते हैं। तो बहुत बड़ी आसुरी शक्ति का विनाश हुआ था, लेकिन आज 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 हर एक फेस्टिवल को लोगों ने अपनी इंद्रकृति बना ली है। रावण का दहन करते हैं, लेकिन उसमें भी कितना पैसा खर्चा करते हैं, क्या क्या करते, बहुत सारी चीजें करते हैं, वो भी उनका एक एंजॉय का ये हो गया है। लेकिन हम रियल इन कथाओं को सुनेंगे, तो विशेष करके जो 10 दिन का समय था ना, ये बहुत विशेष समय था, बहुत ही विशेष समय था, तो इसको हमको जानना चाहिए कितना पवित्र दिन आज दशहरा है जानकर। और प्रभु रामचंद्र से प्रार्थना, भगवान के नाम से प्रार्थना करना चाहिए, नाम प्रभु, हरिनाम प्रभु, इसलिए बोलते ना हरिनाम प्रभु, हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि आज आज के दिन जिस प्रकार से प्रभु राम ने रावण का दमन किया, वैसा रावण हमारे हृदय के अंदर जो बैठा है, रावण उसको, रावण हमारे जो हृदय के अंदर बैठ चुका है, आप हमारे ऊपर कृपा करें कि हमारे हृदय के अंदर जो एक छुपा रावण है उसका नाश हो, ये प्रार्थना करना चाहिए आज के दशहरा के दिन पे, ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 मिनट आप लोगों ने लेट किया, तो 15 मिनट मैंने किया। क्या उल्टा डाल रहे थे? नहीं, उल्टा नहीं डाल रहे थे। अभी देखिए, सेतु किस उद्देश्य से बनाया गया था, हमको उद्देश्य देखना चाहिए पहले कि किस उद्देश्य से बनाया गया था। माता सीता को सुधारने के लिए उस सेतु का निर्माण किया गया था, तो अभी वो सेतु का उद्देश्य उसके लिए बनाया गया था, लेकिन उस सेतु को बनाने के बनाया गया था तो जिस उद्देश्य से बनाया गया था उस कार्य की पूर्ति हुआ है ना। ऐसा ये नहीं है कि नाम को लिख दिया, डाला, उसके ऊपर पैर कैसे रख सकते, अभी वो वहां पे ये सिद्धांत नहीं चलेगा। कभी कभी हम ना कभी कभी जैसे कि सेवा पूजा में मिली, कभी कभी हम सिद्धांतों से हटकर हमको सिचुएशन को देख के जाना पड़ता है। तो उस सेतु का निर्माण किसी और उद्देश्य से हुआ था, तो यहाँ पे सारे ये बातें लागू ही नहीं होता एक्चुअली, क्योंकि वो एक बड़ी सेवा के लिए किया गया था, और माता सीता को वापस लाने के लिए वो किया गया था। तो उस प्रकार से उसमें तो मुझे तो और कोई शास्त्रीय रीजन तो इसमें नहीं दिख रहा है, कुछ मिलेगा तो मैं बोलूंगा कभी भी ऐसा। और कुछ हो सकता होगा, ऐसे भी हो सकता होगा,
कुछ में नहीं
जानता, ऐसा भी हो सकता है। पुराण की कभी ना का ये अलग अलग काल में ये कथाएं थोड़ा थोड़ा चेंज हो रही है, समझे ना। तो पहले भी उसने तपस्या करके सिर प्राप्त हुआ था, अभी कुछ और नीचे से और वर प्राप्त करने के लिए और शक्तिशाली बनने के लिए फिर से उसने तपस्या किया इस प्रकार से। तो कभी कभी ना अलग अलग कालों में ना भगवान की लीलाएं सेम होती है, लेकिन स्टोरियां थोड़ी बदल जाती है, ऐसा स्टोरियां बदल जाती है। इसलिए हर एक स्टोरी से याद रखिए इस बात को कि हर एक स्टोरी से शिक्षा लेना चाहिए, स्टोरीज में हमको नहीं फंसना चाहिए, है ना, कि उसका सिर था, ऐसा था, वैसा था, ये स्टोरीज है। और निश्चित रूप से निश्चित रूप से अलग अलग युगों में ना वो निश्चित रूप से स्टोरियां बदल जाती है, कुछ ना कुछ चेंजेस तो होता है हर युगों में, ऐसा नहीं कि भगवान एक ही बस फिक्स हो गया तो वही करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो होता ही है स्टोरीज में, स्टोरीज में चेंजेस आता है। इसलिए अलग अलग पुराणों में, एक पुराण में स्टोरी है तो कभी उस पुराण पढ़ेगा तो दूसरा स्टोरी मिलेगा। हमें गणेश जी का ही उस दिन कथा जब पढ़ रहा था तो अलग अलग हमको बहुत सारे 4-5 कथाएं हमको मिली जो कि एक दूसरे से लिंक नहीं हो रहा था, लेकिन हमने यही देखा कि हमको इससे शिक्षा क्या लेना है, इन कथाओं से उस शिक्षा को लेना है, क्योंकि पुराणों में एक ही कथाओं कई जगह पे अलग अलग तरह से अंदर गया, लेकिन कोई गलत नहीं है, वो गलत नहीं हो गए, आपने जो सोचा वो गलत नहीं है, वो सत्य है, लेकिन किसी और काल में हुआ रहेगा, इस प्रकार से हुआ रहेगा, ऐसा है सारे स्टोरी। इसलिए मेन चीज है स्टोरी से हम क्या सीखते हैं वो महत्वपूर्ण है। अभी एक गृहस्थ धर्म में बताऊंगा मैं, यही टॉपिक है पूरा, पार्ट टू का यही टॉपिक है, पार्ट टू का यही टॉपिक है, तो ध्यान रखना, ध्यान से सुनना पार्ट टू, मैं यही बात को बताऊंगा क्यों रोया, ये सब आएगा उसके अंदर, नारद जी का प्रवचन आएगा, क्यों रोया, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, और कुछ, ठीक है, हरे कृष्णा, नेक्स्ट काउंसलिंग है कि नहीं है, सब लोग से पूछ लीजिए, अभी एब्सेंट कौन कौन लोग हैं अभी फिलहाल,
सीमा माता जी,